अध्ययन लेख 37। इस लेख का अध्ययन 9 से 15 नवंबर के दौरान किया जाएगा। विषय, अपना हाथ मत रोक। यह लेख सबोपदेशक 11 के 6 पर आधारित है, जहां लिखा है, सुबह अपना बीज बो और शाम तक अपना हाथ मत रोक। गीत 68,
राज का बीज बोएं।
लेख की एक झलक।
पिछले लेख में बताया गया था कि जिन बाइबल विद्यार्थियों ने अच्छी तरक्की की है वो खुशखबरी के प्रचारक बनने के बारे में सोचें। इस लेख में सभी प्रचारकों को बढ़ावा दिया जाएगा कि वो प्रचार काम में लगे रहें, फिर चाहे वो नए हों या सालों से प्रचार कर रहे हों। हम ऐसी 3 बातों पर चर्चा करेंगे जिनका ध्यान रखने से हम तब तक प्रचार में लगे रहेंगे जब तक यहोवा नहीं कहता कि ये काम पूरा हो गया है।
पैराग्राफ 1 और 2। सवाल, सबोपदेशक 11 के 6 के मुताबिक प्रचार काम के लिए हमें कैसा जज्बा होना चाहिए?
कुछ देशों में जब हम लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं तो वो और जानना चाहते हैं। वो खुशी से फूले नहीं समाते मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वही दूसरे देशों में लोग परमेश्वर या बाइबल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। आपके इलाके में लोग कैसे हैं? क्या वो खुशखबरी सुनना चाहते हैं या नहीं? चाहे लोग सुने या ना सुने, यहोवा चाहता है कि हम प्रचार में लगे रहें जब तक वो नहीं कहता कि ये काम पूरा हो गया है। यहोवा तय कर चुका है कि प्रचार काम कब तक पूरा हो जाएगा। ये काम पूरा होते ही अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14 और 36। तब तक हमें यहोवा की ये आज्ञा माननी है, अपना हाथ मत रोक। फुटनोट, इसका क्या मतलब है?
इस लेख में अपना हाथ मत रोक का मतलब है,
तब तक खुशखबरी सुनाते रहना जब तक यहोवा नहीं कहता कि ये काम पूरा हो गया है। फुटनोट समाप्त।
आइए देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं।
सबोपदेशक 11 के 6 में लिखा है, सुबह अपना बीज बो और शाम तक अपना हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा बीज उगेगा,
यहां वाला या वहां वाला या फिर दोनों उगेंगे।
पैराग्राफ 3। सवाल,
इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे?
पिछले लेख में हमने देखा कि खुशखबरी के अच्छे प्रचारक बनने के लिए हमें क्या करना होगा। हमने 4 बातों पर चर्चा की थी। इस लेख में हम देखेंगे कि प्रचार में लगे रहने के लिए हमें क्या करना होगा। हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। 1, अपना ध्यान भटकने ना दें। 2, सब्र रखें। और 3, अपना विश्वास मजबूत रखें। ये सब करने से हम प्रचार काम करते रहेंगे, फिर चाहे हम पर जो भी मुश्किलें आए। अपना ध्यान भटकने ना दें। पैराग्राफ 4। सवाल, हमें उस काम पर क्यों ध्यान लगाए रखना है जो यहोवा ने हमें दिया है? यीशु ने बताया था कि आखिरी दिनों में क्या क्या होगा और लोग किन बातों में उलझे रहेंगे। वो जानता था कि उसके चेले भी इन बातों में उलझ सकते हैं और प्रचार काम में ढीले पड़ सकते हैं। यही वजह है कि उसने कहा, जागते रहो। मत्ती 24:42। आज वाकई ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से हमारा ध्यान भटक सकता है, ठीक जैसे नूह के दिनों में लोगों का ध्यान भटक गया था। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ध्यान उस काम पर लगा रहे जो यहोवा ने हमें दिया है।
पैराग्राफ 5। सवाल,
प्रेषितों 1:6-8 के मुताबिक प्रचार काम किस हद तक किया जाएगा? आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब प्रचार करना बहुत जरूरी हो गया है। हम लापरवाह हो ही नहीं सकते।
जब यीशु धरती पर था तो उसने कहा कि उसके चेले भी उसकी मौत के बाद प्रचार करते रहेंगे और उससे भी ज्यादा ये काम करेंगे।
यीशु की मौत के बाद कुछ चेले दोबारा मछुआई करने में लग गए, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब यीशु जिंदा हुआ तो इसके बाद क्या हुआ? एक बार उसने देखा कि उसके चेले मछलियां पकड़ने में नाकाम हो गए हैं, फिर उसने चमत्कार करके उन्हें बहुत सी मछलियां दिलाई। उसी मौके पर उसने समझाया कि उसने प्रचार करने का जो काम सौंपा है उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, न कि किसी और काम पर। स्वर्ग लौटने से पहले यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वो इसराइल देश के अलावा दुनिया के दूसरे इलाकों में भी प्रचार करेंगे। प्रेषितों 1:6-8 में लिखा है,
जब चेले इकट्ठा हुए तो उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या तू इसी वक्त इसराइल को उसका राज दोबारा दे देगा? उसने उनसे कहा, समय या दौर को जानने का अधिकार तुम्हें नहीं, इन्हें तय करना पिता ने अपने अधिकार में रखा है।
लेकिन जब तुम पर पवित्र शक्ति आएगी तो तुम ताकत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यहां तक कि दुनिया के सबसे दूर के इलाकों में मेरे बारे में गवाही दोगे। फिर सालों बाद यीशु ने प्रेषित योहन्ना को एक दर्शन में दिखाया कि प्रभु के दिन में क्या होगा। फुटनोट, प्रभु का दिन 1914 में शुरू हुआ जब यीशु राजा बना। यह दिन उसके 1000 साल के राज के आखिर में खत्म होगा। फुटनोट समाप्त। उसने देखा कि एक स्वर्गदूत के पास सदा तक कायम रहने वाली खुशखबरी है और वो हर राष्ट्र, गोत्र, भाषा और जाति के लोगों को वो संदेश सुना रहा है। प्रकाशित वाक्य 14:6। इन सारी बातों से पता चलता है कि आज यहोवा हमसे क्या चाहता है। यही कि हम प्रचार करने में तब तक लगे रहें जब तक यहोवा नहीं कहता कि ये काम पूरा हो गया है। पैराग्राफ 6, सवाल, किस बारे में सोचने से हम प्रचार काम में लगे रहेंगे? यहोवा आज हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है? अगर हम इस बारे में सोचें तो हम प्रचार काम को अपनी जिंदगी में पहली जगह देते रहेंगे। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा किताबें, पत्रिकाएं हैं और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। हमारे पास ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम भी हैं। जरा सोचिए, हमारी वेबसाइट पर 1000 से ज्यादा भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। आज दुनिया के लोगों में फूट पड़ी है क्योंकि उनके राजनीतिक और धार्मिक विचार आपस में मेल नहीं खाते और उनमें अमीर गरीब का भेद है। लेकिन यहोवा के लोग कितने अलग हैं। आज उनकी गिनती 80 लाख से ज्यादा है और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। फिर भी उनमें सच्ची एकता और भाइयों जैसा प्यार है। उनकी एकता का एक सबूत शुक्रवार 19 अप्रैल 2019 को देखा गया। उस दिन पूरी दुनिया में रहने वाले साक्षियों ने सुबह की उपासना का एक वीडियो देखा। फिर उसी शाम 2,09,19,041 लोग मसीह की मौत का स्मारक मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। आज के समय में यह बहुत बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना और इसका हिस्सा होना एक बहुत बड़ी आशीष है। इस बात पर मनन करने से हमें जोश भर आता है कि हम प्रचार काम में लगे रहें और कभी पीछे ना हटें।
पैराग्राफ 7,
सवाल, हम यीशु के उदाहरण से क्या सीखते हैं? प्रचार काम पर पूरा ध्यान लगाए रखने में एक और बात हमारी मदद कर सकती है। हमें यीशु की तरह बनने की कोशिश करनी है। वो सच्चाई की गवाही देता रहा और उसने किसी भी वजह से अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। जब शैतान ने उसे दुनिया के सारे राज्य और उनकी शानो शौकत दिखाई और उसे लुभाया तो उसने इनकार कर दिया। जब लोगों ने भी उसे राजा बनाने की कोशिश की तो वो उनकी बातों में नहीं आया। मती 4:8, उसने ना तो धन दौलत के लालच में आकर ना ही विरोधियों के डर से प्रचार काम बंद कर दिया। यीशु के इस बढ़िया उदाहरण को याद रखने से हम प्रचार काम में लगे रहेंगे, फिर चाहे हमारे सामने कोई भी परीक्षा क्यों ना आए। प्रेषित पौलुस ने भी यही सलाह दी कि हम यीशु की तरह बनने की कोशिश करें, तब हम थक कर हार नहीं मानेंगे। इब्रानियों 12:3। पैराग्राफ 7 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, यीशु सच्चाई की गवाही देता रहा, उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। सब्र रखें। पैराग्राफ 8, सवाल क, हमें कब कब सब्र रखना होता है? सवाल ख, आज सब्र रखना क्यों खास तौर से जरूरी है? हमें जिंदगी में कई बार सब्र रखना पड़ता है। अगर हम कोई मुश्किल झेल रहे हैं
तो हमें सब्र रखना होता है कि एक दिन ये जरूर खत्म होगी।
अगर हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाए हुए हैं तो ऐसे में भी हमें सब्र रखना होता है। भविष्यवक्ता हबकूक वो दिन देखने के लिए तरस रहा था जब यहूदा देश से हिंसा और बुराई मिट जाती।
यीशु के चेले उम्मीद लगाए हुए थे कि परमेश्वर का राज कुछ ही पल में जाहिर हो जाएगा और रोमी सरकार के अत्याचार से उन्हें राहत दिलाएगा।
लुका 19:11।
हम भी वो दिन देखने के लिए तरस रहे हैं जब परमेश्वर का राज बुराई को मिटा देगा और नई दुनिया लाएगा।
लेकिन हमें सब्र रखना है और यहोवा के वक्त का इंतजार करना है।
जब तक वो वक्त नहीं आता, यहोवा हमें सब्र रखना सिखा रहा है। आइए देखें कैसे।
पैराग्राफ 9। सवाल, किन घटनाओं से पता चलता है कि यहोवा सब्र रखता है?
यहोवा खुद सब्र रखता है और चाहता है कि हम उससे सीखें।
उसने नूह को जहाज बनाने और नेकी का प्रचार करने के लिए काफी समय दिया। दूसरा पत्रस 2:5।
जब अब्राहम सदोम और अमोरा के नाश के बारे में सवाल पर सवाल करता रहा तो यहोवा उसकी सुनता रहा।
और जब इसराइलियों ने सदियों तक यहोवा के खिलाफ काम किया तो वो उनकी सहता रहा।
आज भी यहोवा सब्र रखता है ताकि नेक दिल लोगों को पश्चाताप करने का मौका मिले।
दूसरा पत्रस 3:9। यहोवा से हम सीखते हैं कि हमें भी प्रचार और सिखाने के काम में सब्र रखना है।
उसके वचन में दी एक मिसाल से हम सब्र के बारे में कुछ सीखते हैं।
पैराग्राफ 10। सवाल, याकूब 5:7-8 के मुताबिक एक किसान क्यों तारीफ के लायक है?
याकूब 5:7-8 में लिखा है,
इसलिए भाइयों, हमारे प्रभु की मौजूदगी तक सब्र रखो।
ध्यान दो, एक किसान जमीन की बढ़िया पैदावार पाने के लिए इंतजार करता है और शुरू की बारिश और बाद की बारिश होने तक सब्र रखता है।
तुम भी सब्र रखो, अपने दिलों को मजबूत करो, क्योंकि प्रभु की मौजूदगी का वक्त पास आ गया है।
इन आयतों में एक किसान की मिसाल दी गई है
जिसे हम सब्र रखना सीख सकते हैं।
ये सच है कि कुछ फसलें जल्दी पकती हैं,
लेकिन ज्यादातर फसलों को पकने में समय लगता है।
इसराइल देश में खेती करने का मौसम 6 महीने लंबा होता था।
जब 15 अक्टूबर के आसपास शुरू की बारिश होती तब किसान बीज बोता था, मगर फसल के पकने के लिए उसे 15 अप्रैल के आसपास होने वाली बारिश का इंतजार करना होता था। इतने लंबे इंतजार के बाद ही उसे फल मिलता था।
आइए हम भी किसान की तरह सब्र रखें, लेकिन ऐसा करना शायद आसान ना हो।
पैराग्राफ 11। सवाल, प्रचार काम करते समय हमें क्यों सब्र रखना चाहिए?
अपरिपूर्ण होने की वजह से हम इंसानों को किसी भी चीज का इंतजार करना मुश्किल लगता है। अगर हमने किसी काम में मेहनत की है तो हम उसके नतीजे तुरंत चाहते हैं, लेकिन बागबानी या खेतीबाड़ी में बहुत सब्र से काम लेना होता है। हमें मिट्टी खोदनी होती है, पौधे लगाने होते हैं, समय समय पर घास फूस निकालने होते हैं और पानी देते रहना पड़ता है। काफी लंबे समय तक ये सब करना होता है। चेले बनाने के काम में भी लगातार मेहनत करनी होती है।
जैसे बगीचे से घास फूस निकालने में वक्त लगता है, वैसे ही बाइबल विद्यार्थियों के मन से भेदभाव को जड़ से निकालने में वक्त लगता है।
हमें उन्हें सिखाना पड़ता है कि वो सबके साथ प्यार से व्यवहार करें। जब प्रचार में हमारी कोई नहीं सुनता तब भी हमें सब्र रखना चाहिए, फिर हम निराश नहीं होंगे।
जब लोग सुनना चाहते हैं और बाइबल के बारे में सीखना चाहते हैं तब भी हमें सब्र रखना होगा कि वो वक्त आने पर तरक्की करेंगे।
हम एक बाइबल विद्यार्थी पर दबाव नहीं डाल सकते कि वो जल्द से जल्द तरक्की करे।
कभी कभी यीशु के चेले भी उसकी बातों के मायने नहीं समझ पाते थे, उन्हें वक्त लगता था।
हमें याद रखना है कि हम सिर्फ सच्चाई का बीज बोते हैं और पानी देते हैं, मगर यहोवा उसे बढ़ाता है।
पैराग्राफ 10 और 11 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, किसान बहुत मेहनत करता है फिर भी सब्र रखता है। हमें भी सब्र रखना है।
पैराग्राफ 12। सवाल।
रिश्तेदारों को गवाही देते वक्त हमें सब्र क्यों रखना चाहिए?
अपने रिश्तेदारों को गवाही देते समय सब्र रखना हमें मुश्किल लग सकता है,
लेकिन सबोपदेशक 3 के 7 में दी सलाम मानने से हम अपना सब्र नहीं खोएंगे।
वहां लिखा है, चुप रहने का और बोलने का समय होता है।
हमें अच्छा चालचलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमें देखकर हमारे रिश्तेदार सच्चाई के बारे में जानना चाहें।
इस तरह हम चुप रहकर भी एक तरह से गवाही दे रहे होंगे,
लेकिन जब जब मौका मिलता है
हमें उन्हें सच्चाई के बारे में बताना भी चाहिए।
यह सच है कि हमें जोश के साथ प्रचार करना और सिखाना चाहिए, लेकिन हमें सब्र भी रखना चाहिए अपने रिश्तेदारों को गवाही देते समय भी।
पैराग्राफ 13 और 14, ऐसे कुछ लोगों के उदाहरण बताइए जिन्होंने सब्र रखा।
हम यहोवा के कई वफादार सेवकों से सब्र रखना सीख सकते हैं।
बाइबल के जमाने में और हमारे जमाने में भी ऐसे लोग रहे हैं।
हबकूक उनमें से एक था। वो चाहता था कि यहूदा देश से बुराई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिर भी उसने सब्र रखा और पूरे भरोसे के साथ कहा, मैं अपने पहरे की चौकी पर खड़ा रहूंगा। हबकूक 2:1।
प्रेषित पौलुस ने भी सब्र से काम लिया।
उसे सेवा करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे वो पूरा करना चाहता था,
मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। वो लोगों को खुशखबरी के बारे में अच्छी गवाही देता रहा।
अब हमारे जमाने के एक शादीशुदा जोड़े का उदाहरण लीजिए। वो जब गिलियड स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो उन्हें एक ऐसे देश में भेजा गया जहां बहुत कम साक्षी थे और वहां ईसाई भी बहुत कम थे।
ज्यादातर लोग बाइबल के बारे में नहीं सीखना चाहते थे,
लेकिन उस जोड़े की गिलियड क्लास के दूसरे विद्यार्थियों को जिन देशों में भेजा गया था वहां उन्हें बहुत से बाइबल अध्ययन मिल रहे थे और उन्होंने सच्चाई सीखने में कई लोगों की मदद की।
वो अक्सर इस जोड़े को खबर देते थे कि उन्हें कितने अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हालांकि इस जोड़े को कुछ खास नतीजे नहीं मिल रहे थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी।
वो अपना काम करते रहे। 8 साल तक प्रचार करने के बाद आखिरकार उनकी एक बाइबल विद्यार्थी ने बपतिस्मा लिया, जो उनके लिए बहुत खुशी की बात थी।
बाइबल के जमाने और हमारे जमाने के इन सेवकों में हमने एक अच्छी बात गौर की।
उन्होंने कभी अपना हाथ नहीं रोका, यानी वो ढीले नहीं पड़े, और यहोवा की आशीष से उन्हें सब्र का फल मिला।
आइए हम उन लोगों की मिसाल पर चलें जो विश्वास और सब्र रखने की वजह से वादों के वारिस बनते हैं।
इब्रानियों 6:10-12।
अपना विश्वास मजबूत बनाए रखें।
पैराग्राफ 15।
एक वजह बताइए कि हम क्यों ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करना चाहते हैं।
हमें विश्वास है कि हम लोगों को जो बताते हैं वो जरूर पूरा होगा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। हमें भरोसा है कि बाइबल में लिखे सारे वादे पूरे होंगे।
हमने खुद बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होते देखा है।
हमने ये भी देखा है कि जब लोग बाइबल की सलाह मानते हैं तो वो अपने अंदर बदलाव करते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं।
इससे हमारा यकीन बढ़ जाता है कि हर किसी को खुशखबरी सुनाना जरूरी है।
पैराग्राफ 16। सवाल। भजन 46 के 1-3 के मुताबिक हम क्यों कह सकते हैं कि यहोवा और यीशु पर विश्वास होने की वजह से हम प्रचार करते हैं?
इसके अलावा हमें यहोवा पर विश्वास है जिसने हमें ये खुशखबरी दी है।
हमें यीशु पर भी विश्वास है जिसे यहोवा ने अपने राज का राजा बनाया है।
चाहे हम पर जो भी मुश्किल आए, यहोवा हमारी पनाह और ताकत बना रहेगा।
भजन 46 के 1-3 में लिखा है, परमेश्वर हमारी पनाह और ताकत है, बुरे वक्त में आसानी से मिलने वाली मदद है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, चाहे पहाड़ टूटकर समुन्दर की गहराई में समा जाए, चाहे समुन्दर गरजे और उछल उछल कर फेन उठाए,
चाहे उसकी खलबली से पहाड़ बुरी तरह डोले।
हमें इस बात का भरोसा है कि यीशु हमारे साथ है।
यहोवा ने उसे बहुत अधिकार दिया है, और आज वो स्वर्ग से प्रचार काम के लिए निर्देश दे रहा है।
पैराग्राफ 17। एक अनुभव बताइए जिससे पता चलता है कि हमें क्यों प्रचार करते रहना चाहिए। विश्वास होने की वजह से हमें यकीन है कि यहोवा हमारी मेहनत पर जरूर आशीष देगा।
कई बार तो वो ऐसी आशीषें देता है कि हम हैरान रह जाते हैं।
हम सरेआम गवाही देने का जो काम करते हैं उसकी मिसाल लीजिए। हम जो टेबल और काट लगाते हैं, हर दिन हजारों लोग उन्हें देखते हैं। क्या इससे हमें कुछ नतीजे मिलते हैं? जी हाँ, नवंबर 2014 की हमारी राज सेवा में एक लड़की का अनुभव बताया गया था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो यहोवा के साक्षियों पर निबंध लिखना चाहती थी।
वो उनसे मिलने के लिए राजघर ढूंढ रही थी, मगर उसे मिल नहीं रहा था। फिर उसने देखा कि उसकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही साक्षियों ने टेबल लगाया हुआ है।
वहां उसे हमारी किताबें पत्रिकाएं मिली और निबंध लिखने के लिए जानकारी भी मिल गई।
बाद में वो बपतिस्मा लेकर एक साक्षी बन गई और आज वो एक पायनियर है। इस तरह के अनुभव से पता चलता है कि आज भी कई लोग हमारा संदेश सुनने के लिए तैयार हैं। इससे हमारे अंदर जोश भर आता है कि हम प्रचार काम करते रहें।
अपना हाथ कभी न रोकें। पैराग्राफ 18। सवाल, हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि प्रचार काम यहोवा के निश्चित समय पर पूरा हो जाएगा? हम पक्का यकीन रख सकते हैं कि प्रचार काम सही समय पर पूरा हो जाएगा, इसमें देर नहीं होगी। यहोवा हर काम समय पर करता है। याद कीजिए कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। जलप्रलय से करीब 120 साल पहले यहोवा ने तय कर दिया था कि ये कब आएगा। फिर सालों बाद यहोवा ने नूह से कहा कि वो जहाज बनाए। नूह ने करीब 40 से 50 साल तक जहाज बनाने में बहुत मेहनत की। वो लोगों को चेतावनी भी देता रहा। जब तक यहोवा ने उसे जानवरों को जहाज में ले जाने के लिए नहीं कहा, तब तक वो लोगों को बताता रहा, इसके बावजूद कि किसी ने नहीं सुना। फिर निश्चित समय पर यहोवा ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। उत्पत्ति 7:1-2:16। पैराग्राफ 19। सवाल, अगर हम अपना हाथ न रोकें तो हमें क्या आशीष मिलेगी? जल्द ही यहोवा हम पर जाहिर करेगा कि राज का प्रचार काम पूरा हो चुका है। एक बार फिर वो दरवाजा बंद करने वाला है, यानी शैतान की दुनिया का नाश करने वाला है। इसके बाद वो नई दुनिया लाएगा जहां सिर्फ उसकी आज्ञा मानने वाले लोग रहेंगे। उस समय के आने तक हम नूह, हबक्कूक और दूसरे सेवकों की तरह कभी अपना हाथ ना रोके।
तो आइए हम प्रचार काम से अपना ध्यान भटकने न दें, सब्र रखें और यहोवा और उसके वादों पर अपना विश्वास मजबूत करते रहें। प्रचार काम में लगे रहने के लिए हमें क्यों अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए? हमें क्यों सब्र रखना चाहिए? हमें क्यों मजबूत विश्वास बनाए रखना चाहिए? गीत 75। मैं यहां हूं, मुझे भेज।
लेख समाप्त।